एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम गोता लगाने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प विषय में जो हमारे रोज के अनुभव से जुड़ा है।
और मैं हूं आपका साथी होस्ट। हम बात करेंगे धारणा की, परसेप्शन। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं।
आधार है प्रोफेसर ब्रायन जे रोजस की किताबें परसेप्शन और परसेप्शन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और ये विषय आज क्यों इतना जरूरी है? मतलब हम तो सोचते हैं कि हम दुनिया को बस देख लेते हैं, जैसा है वैसा।
सही कहा, पर क्या वाकई ऐसा है? ये समझना सिर्फ हमारे लिए ही जरूरी नहीं है, ये एआई, वीआर जैसी टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और शायद चेतना जैसे बड़े सवालों से भी जुड़ा है।
बिल्कुल, जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है जब हम बस यूं ही देख रहे होते हैं।
चलिए प्रोफेसर रोजर्स के काम से इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
तो पहले ये जान लें कि ये ब्रायन जे रोजर्स हैं कौन।
हाँ बताइए जरा।
प्रोफेसर रोजर्स वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के एमेरिटस प्रोफेसर हैं।
सोचिए 40 साल से ज्यादा।
सिर्फ ये समझने में कि हम इंसान और जानवर दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं।
कमाल है। और उनकी खासियत सिर्फ रिसर्च नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली खूबी है मुश्किल वैज्ञानिक बातों को आसान बनाना, दिलचस्प बनाना। वो खास तौर पर स्थानिक दृष्टि, गहराई को समझना और विजुअल प्रोसेसिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं।
मतलब वो सिर्फ थ्योरी नहीं जानते बल्कि उन एक्सपेरिमेंट्स को भी समझते हैं जिनसे ये थ्योरी निकली है। वो परसेप्शन को एक जीती जागती प्रक्रिया मानते हैं।
सही, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे वैज्ञानिक तरीकों से समझा जा सकता है। जादू नहीं बल्कि दिमाग की एक शानदार इंजीनियरिंग।
तो फिर उनकी किताबों का सार क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है जो वो कहते हैं?
सबसे बड़ी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी धारणा, मतलब जो हम देखते सुनते हैं, वो दुनिया की कोई सीधी पैसिव रिकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कैमरा फोटो खींचता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है।
अच्छा, तो फिर ये है क्या अगर सीधी रिकॉर्डिंग नहीं है तो?
रोजस कहते हैं कि ये एक सक्रिय, एक्टिव, जटिल और अनुमान लगाने वाली प्रक्रिया है। मतलब दिमाग एक जासूस की तरह है, उसे हमारी इंद्रियों से अधूरी, अस्पष्ट, शोर वाली जानकारी मिलती है।
हाँ, दुनिया तो उलझी ही है काफी।
बिल्कुल, तो दिमाग इस कच्ची जानकारी को लेता है और उससे आसपास की दुनिया का एक स्थिर, मतलब वाला 3D मॉडल बनाता है। वो लगातार सबसे अच्छा अंदाजा लगा रहा है कि बाहर क्या चल रहा होगा।
मतलब जो रंग हम देखते हैं, जो आवाजें सुनते हैं, वो सब दिमाग की इस जटिल प्रक्रिया का नतीजा है।
ये तो अद्भुत है। किताब इसी सफर को समझाती है कि कैसे रोशनी या आवाज हमारे दिमाग में रंग, संगीत या चेहरे के अनुभव में बदल जाती है। हाँ, और रोजर्स एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तथाकथित विफलताओं को देखना, जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन,
दृष्टि भ्रम। वो कैसे? वो तो गलतियां लगती हैं।
हाँ, पर रोजर्स कहते हैं कि वो गलतियां नहीं हैं, वो उन नियमों की तरफ इशारा करती हैं जिनका इस्तेमाल दिमाग आमतौर पर सही करता है। भ्रम हमें दिखाते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है।
चलिए इसी प्रक्रिया को थोड़ा और खोलते हैं। वो जो मूल समस्या है कि जानकारी अधूरी और अस्पष्ट होती है, इसका कोई उदाहरण देंगे?
हाँ, इसे व्युत्क्रम समस्या या इनवर्स प्रॉब्लम कहते हैं। सोचिए, आंख के रेटिना पर एक छवि बनी। अब ये छवि किसी छोटी नज़दीकी चीज़ की भी हो सकती है या किसी बड़ी दूर की चीज़ की भी। रेटिना पर तो साइज एक जैसा हो सकता है।
अरे हाँ, तो दिमाग को कैसे पता चलेगा कि सच क्या है, पास है या दूर?
सही सवाल। ये जानकारी छवि में सीधे सीधे तो है ही नहीं। यहीं पर हेल्महोल्ट्ज़ का अचेतन अनुमान यानी अनकॉन्शियस इन्फरेंस का सिद्धांत आता है। दिमाग लगातार बिना हमें पता चले बिजली की तेजी से सबसे अच्छा अनुमान लगा रहा होता है।
अनुमान किस आधार पर?
जो सेंसरी सबूत मिल रहा है, जैसे रेटिना की छवि और साथ में हमारे पिछले अनुभव और दुनिया के बारे में जो हमारा ज्ञान है, उसके आधार पर। ये ऑटोमेटिक है, हमें सोचना नहीं पड़ता।
इसका कोई जाना पहचाना उदाहरण है जहां हम देख सकें कि दिमाग कैसे अनुमान लगा रहा है?
हाँ, वो रूबिन का फूलदान चेहरे वाला इल्यूजन याद है?
हाँ, जिसमें या तो सफेद फूलदान दिखता है या दो काले चेहरे।
बिल्कुल, आप दोनों एक साथ नहीं देख सकते। दिमाग उस अस्पष्ट तस्वीर को लेता है और उस पर एक मतलब थोपता है। या तो फूलदान या चेहरे। ये दिखाता है कि दिमाग सिर्फ देख नहीं रहा, वो सक्रिय रूप से व्याख्या कर रहा है, एक कहानी चुन रहा है।
ठीक है, तो दिमाग अनुमान लगाता है, पर ये होता कैसे है? मतलब दिमाग के अंदर क्या मशीनरी है जो ये काम करती है?
देखिए, आंखें तो कमाल के उपकरण हैं जानकारी जमा करने के लिए, लेकिन असली प्रोसेसिंग वो दिमाग में होती है। आंखों से जानकारी ऑप्टिक नर्व से होती हुई दिमाग के पीछे विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है। ये पहला बड़ा स्टेशन है।
और वहां क्या होता है? क्या दिमाग पूरी तस्वीर एक साथ देखता है, जैसे कोई फोटो?
नहीं, ऐसा नहीं है। यूबल और वीजल, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, उन्होंने खोजा कि विजुअल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स, दिमाग की कोशिकाएं, वो पूरी तस्वीर नहीं बल्कि बहुत खास विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे सीधी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, किनारे, कोने।
अच्छा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, इसे फीचर डिटेक्शन कहते हैं।
हाँ बिल्कुल। दिमाग पहले इन बुनियादी टुकड़ों को पहचानता है, जैसे किसी तस्वीर के पिक्सल या किसी शब्द के अक्षर।
तो पहले ये छोटे छोटे टुकड़े पहचाने जाते हैं, फिर इनसे पूरी चीज कैसे बनती है, जैसे कुर्सी या चेहरा?
ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, हायरार्किकल प्रोसेसिंग, जैसे फैक्ट्री की असेंबली लाइन। पहले सरल चीजें, फिर उन्हें जोड़कर थोड़ी जटिल, फिर और जटिल। और यहीं पर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत काम आते हैं।
गेस्टाल्ट, ये क्या है?
ये कुछ नियम हैं जिनका इस्तेमाल दिमाग बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर पूरी सार्थक चीजें बनाने के लिए करता है। जैसे निकटता का नियम, पास की चीजें एक ग्रुप लगती हैं, समानता, एक जैसी चीजें एक साथ दिखती हैं, निरंतरता, हम टूटी रेखाओं को भी पूरा देखते हैं, समापन, अधूरी आकृतियों को पूरा मान लेते हैं।
अच्छा,
जैसे अखबार की तस्वीर में डॉट्स होते हैं पर हमें पूरी तस्वीर दिखती है।
हाँ बिल्कुल,
ये नियम दिमाग को दुनिया को टुकड़ों में नहीं बल्कि संगठित चीजों और समूहों में देखने में मदद करते हैं।
और एक और कमाल की बात, हमारी आंख के रेटिना पर तो 2D इमेज भी बनती है ना, फिर हमें दुनिया 3D क्यों दिखती है? गहराई कैसे पता चलती है?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। दिमाग इसके लिए कई तरह के संकेतों, मतलब क्यूज का इस्तेमाल करता है। कुछ क्यूज दोनों आंखों पर निर्भर करते हैं, जैसे बाइनोक्युलर डिस्पैरिटी।
बाइनोक्युलर डिस्पैरिटी,
हाँ, हमारी दोनों आंखों के बीच थोड़ी दूरी है ना, तो हर आंख दुनिया को थोड़े अलग एंगल से देखती है। दिमाग इन दोनों छवियों के मामूली अंतर को पकड़ता है और उससे गहराई का अंदाजा लगाता है। 3G फिल्में इसी सिद्धांत पर काम करती हैं।
अच्छा,
और अगर एक आंख बंद कर लें तो तब भी तो थोड़ी गहराई दिखती है।
हाँ दिखती है, तब दिमाग एक आंख वाले संकेतों यानी मोनोक्यूलर क्यूज का इस्तेमाल करता है, जैसे
ओवरलैप, जो चीज दूसरी को ढक रही है वो पास है।
हाँ ये तो होता है,
रेखीय परिप्रेक्ष्य, जैसे रेल की पटरियां दूर जाकर मिलती हुई दिखती हैं। टेक्सचर ग्रेडियंट, पास की बनावट मोटी, दूर की महीन दिखती है। और मोशन पैरालैक्स,
मोशन पैरालैक्स वो क्या है?
जब हम चलते हैं जैसे ट्रेन में, तो पास की चीजें तेजी से पीछे जाती दिखती हैं और दूर की धीरे धीरे।
हाँ, अनुभव किया है ये, तो दिमाग इन सब सुलागों को मिलाता है।
बिल्कुल, इन सब मोनोक्युलर और बाइनोक्युलर क्यूज को मिलाकर दिमाग एक 3D दुनिया का मॉडल बना लेता है।
वाओ, और हिलती डुलती चीजों का क्या, गति को कैसे समझता है?
गति के लिए भी दिमाग में विशेष सर्किट होते हैं। इसका एक मजेदार सबूत है झरना भ्रम या वाटरफॉल इल्यूजन।
झरना भ्रम?
हाँ, अगर आप किसी झरने को कुछ देर तक देखें, फिर पास की स्थिर चट्टानों को देखें, तो वो आपको उल्टी दिशा में, मतलब ऊपर जाती हुई दिखेंगे।
अरे ऐसा क्यों?
क्योंकि नीचे की गति पहचानने वाले न्यूरॉन्स थक जाते हैं और ऊपर की गति वाले ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ये दिखाता है कि गति पहचानने के लिए खास सेल्स हैं।
अच्छा, रॉजर्स ये भी कहते हैं कि हम दुनिया को सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि उसमें काम करने के लिए देखते हैं। धारणा क्रिया चक्र, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि हम चीजों को इसलिए देखते हैं ताकि हम उनके साथ इंटरैक्ट कर सकें, चल सकें, चीजें पकड़ सकें, किसी आती हुई गाड़ी से बच सकें। और जब हम कोई हरकत करते हैं तो उससे हमें नई जानकारी मिलती है जो हमारी अगली हरकत को गाइड करती है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है। देखो, हरकत करो, देखो, हरकत करो।
तो परसेप्शन का असली मकसद एक्शन लेना है?
हाँ, एक तरह से हमें क्रियाशील बनाना।
क्या दिमाग में चीजों को पहचानने और उन पर एक्शन लेने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं?
हाँ, ऐसा माना जाता है। दो दृश्य प्रणाली की परिकल्पना, एक रास्ता है क्या मार्ग,
व्हाट पाथवे,
ये चीजों को पहचानने में मदद करता है। ये क्या है, कप है, किताब है।
और दूसरा?
दूसरा है कहाँ कैसे मार्ग,
वेयर हाउ पाथवे,
ये बताता है कि चीज कहाँ है और उसके साथ एक्शन कैसे लेना है, कब तक हाथ कैसे बढ़ाना है, उसे कैसे पकड़ना है।
इसका कोई सबूत है?
हाँ, पेशेंट DF का केस, उनके क्या मार्ग में चोट थी। वो चीजें पहचान नहीं सकती थी, जैसे एक स्लॉट का एंगल नहीं बता सकती थी। लेकिन जब उनसे कहा गया कि उस स्लॉट में कार्ड डालें, तो वो बिल्कुल सही एंगल पर हाथ घुमाकर डाल सकती थी। उनका कैसे मार्ग ठीक काम कर रहा था।
अद्भुत। और ध्यान, अटेंशन, इसका क्या रोल है? हम हर चीज पर तो ध्यान नहीं देते।
बिल्कुल, दुनिया जानकारी से भरी है, सब कुछ एक साथ प्रोसेस करना नामुमकिन है। ध्यान एक फिल्टर की तरह है, वो तय करता है कि क्या जरूरी है, किस पर संसाधन लगाने हैं,
और बाकी को इग्नोर कर देता है।
हाँ, कभी कभी ये फिल्टर इतना तगड़ा होता है कि हम ठीक सामने की चीज भी नहीं देख पाते अगर ध्यान कहीं और हो। इसे इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं।
अच्छा, जैसे वो गोरिल्ला वाला प्रयोग बास्केटबॉल पास करते हुए।
हाँ, वही, लोग पास गिनने में इतने मगन होते हैं कि गोरिल्ला को नोटिस ही नहीं करते। इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त फोन खतरनाक है, ध्यान बढ़ जाता है।
ध्यान, क्या हमारे पिछले अनुभव और ज्ञान का भी कोई रोल है?
हाँ, बहुत बड़ा रोल है। इसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। जानकारी सिर्फ नीचे से ऊपर नहीं जाती, मतलब इंद्रियों से दिमाग तक, बल्कि ऊपर से नीचे भी आती है।
ऊपर से नीचे मतलब
हमारा ज्ञान, हमारी उम्मीदें, संदर्भ, ये सब प्रभावित करते हैं कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। वो डक रैबिट वाला इल्यूजन याद है?
हाँ, जिसमें कभी बत्तख दिखती है, कभी खरगोश।
आप क्या देखेंगे ये इस बात पर निर्भर कर सकता है कि आपको क्या देखने की उम्मीद दिलाई गई है। ये टॉप डाउन प्रभाव है,
और इसी वजह से हम चीजों को स्थिर देख पाते हैं। जैसे कोई दूर जाए तो छोटा दिखता है, पर हमें पता है कि वो सिकड़ा नहीं है।
बिल्कुल, इसे परसेप्चुअल कंस्टेंसी कहते हैं। आकार की स्थिरता, रंग की स्थिरता, दरवाजा खुलने पर रेटिना पर उसकी शेप बदलती है, पर हमें वो आयताकारी लगता है। ये हमारा ज्ञान है जो मदद करता है। तो ये दिखाता है कि परसेप्शन सिर्फ बॉटम अप नहीं है, टॉप डाउन भी उतना ही जरूरी है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। निचोड़ क्या है, पहली क्या होगी?
पहली और सबसे जरूरी, धारणा एक सक्रिय रचना है, निष्प्रिय प्राप्ति नहीं। दिमाग दुनिया की कहानी गढ़ता है, सिर्फ पढ़ता नहीं। वो कलाकार है, कैमरा नहीं।
बिल्कुल, जैसे हम अधूरी कहानी पूरी करते हैं, वैसे ही दिमाग सेंसरी इनपुट से मतलब निकालता है। सड़क पार करते वक्त कितनी सारी चीजें एक साथ समझनी पड़ती हैं, ये सब दिमाग की सक्रिय रचना है।
दूसरी बात, भ्रम हमारे दिमाग की खिड़कियां हैं। ये सिस्टम की खराबी नहीं, बल्कि उसके काम करने के नियम बताते हैं।
हाँ, जैसे रेगिस्तान में पानी दिखना, मरीची का, वो भ्रम हमें बताता है कि दिमाग प्रकाश और तापमान के बारे में अपने सामान्य नियम लगा रहा है, जो उस खास स्थिति में धोखा दे जाते हैं। तो भ्रम हमें सिखाते हैं।
तीसरा, धारणा का उद्देश्य उपयोगिता है, सटीकता नहीं। हमारा सिस्टम इसलिए बना है ताकि हम जिंदा रह सकें, काम कर सकें। एकदम फोटोकॉपी बनाना उसका मकसद नहीं है।
मतलब बस से बचने के लिए उसकी स्पीड जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय उसका मॉडल नंबर जानने के। काम चलना चाहिए।
सही कहा। और चौथा, दिमाग एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है, प्रेडिक्शन मशीन। वो लगातार अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है।
जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज अंदाजा लगाता है गेंद कहाँ गिरेगी, या हम किसी की बात पूरी होने से पहले समझ जाते हैं।
बिल्कुल, ये भविष्यवाणियां हमारे ध्यान और व्याख्या दोनों को गाइड करती हैं।
रॉजर्स के काम से कुछ बहुत गहरे विचार मिलते हैं। जैसे उनका कहना है, धारणा वास्तविकता की खिड़की नहीं, बल्कि सीमित सेंसरी सबूतों के आधार पर दुनिया के बारे में मस्तिष्क की सबसे अच्छी परिकल्पना है।
हाँ, इसका मतलब है कि जिसे हम असलियत समझते हैं, वो हमारे दिमाग की बनाई हुई एक व्याख्या है, एक बेस्ट गैस, सीधी सच्चाई नहीं। ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है अपनी धारणाओं को लेकर।
और ये वाला, दृष्टि भ्रम विफलता नहीं है, बल्कि वे अमूल्य प्रयोग हैं जो उन नियमों को बताते हैं जिनका उपयोग मस्तिष्क रोजमर्रा की जिंदगी में सफलतापूर्वक करता है।
ये इल्यूजन्स को देखने का नजरिया ही बदल देता है। वो दिमाग को समझने की चाबियां हैं, पहेलियां नहीं।
तीसरा, हम दुनिया को जानने के लिए नहीं, बल्कि उसमें काम करने के लिए अनुभव करते हैं। हमारे धारणा तंत्र सटीकता के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने में मदद करने वाले व्यवहार के लिए ढाले गए हैं।
फिर वही बात, उपयोगिता, एक्शन, यही अंतिम लक्ष्य है।
और आखिर में, हम अपनी आंखों से नहीं देखते या कानों से नहीं सुनते, हम अपने दिमाग से देखते और सुनते हैं।
हाँ, इंद्रियां तो बस उपकरण हैं, असली अनुभव दिमाग में होता है। इसीलिए दिमागी चोट से परसेप्शन बिगड़ सकता है, भले ही आंख कान ठीक हो, सारा खेल दिमाग का है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? कुछ व्यवहारिक उपयोग?
कई हैं। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग। अगर पता है कि धारणा एक रचना है, तो आंखों देखी पर भी सवाल उठा सकते हैं, अपने पूर्वाग्रह पहचान सकते हैं।
हाँ ये तो है।
और टेक्नोलॉजी और डिजाइन में तो सीधा इस्तेमाल है। ऐप डिजाइनर गेस्टाल्ट नियम यूज करते हैं, कलाकार डेप्थ क्यूज, वीआर हेडसेट, बाइनोक्युलर डिस्पैरिटी, सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो भी तो यही पहेलियां सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ड्राइविंग या स्पोर्ट्स जैसी स्किल्स में भी अच्छा ड्राइवर या खिलाड़ी बिना सोचे सही प्रतिक्रिया देता है ना, वो कैसे वाला सिस्टम काम करता है।
हाँ, और ध्यान की सीमाओं को समझना हमें सुरक्षित रखता है, जैसे गाड़ी चलाते वक्त फोन ना यूज करना।
सामाजिक स्तर पर भी इसका असर है।
बिल्कुल, ये समझना कि हर किसी की धारणा थोड़ी अलग हो सकती है, उनके अनुभव, ध्यान, संस्कृति के कारण हमें ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण बना सकता है। तभी तो एक ही घटना के दो गवाह अलग कहानी बताते हैं, हो सकता है दोनों अपनी जगह सच कह रहे हों।
मेरे लिए तो सबसे हैरान करने वाली बात यही रही कि देखना कितना जटिल है। जिसे हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो दिमाग का एक अद्भुत लगातार चलने वाला कर्तव्य है। हम हर पल वास्तविकता रच रहे हैं।
और मेरे लिए ये विचार कि दिमाग लगातार भविष्यवाणी कर रहा है, ये सिर्फ परसेप्शन ही नहीं बल्कि सीखने, एक्सपर्ट बनने और शायद चेतना को समझने का भी एक नया तरीका देता है। हो सकता है हमारा अनुभव, हमारी चेतना, दुनिया के बारे में हमारी लगातार चल रही भविष्यवाणियों का नतीजा हो।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हमारी धारणा वास्तविकता की सिर्फ एक रचना है, एक बेस्ट गेस है, तो फिर वो वास्तविकता कितनी वास्तविक है जिसे हम सब अनुभव करते हैं, और इसका हमारी आपसी समझ पर, खासकर इस विविध दुनिया में क्या असर पड़ता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।